السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على
السلام
سيدنا
عليكم. سليم.
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक से सूरतुल बकारा, कुराने करीम की जो सबसे तवील सूरत है, उसका मुताला करने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसको हमारे दिलों में उतार दे, अल्लाह ताला इसका फहम हमें अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहले हम चंद बातें इंशाअल्लाह ताला इस सूरत की इंट्रोडक्शन की देखेंगे और इसमें इसके फजाइल भी देखते हैं कि कितनी बड़ी फजीलत वाली सूरत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है, यानी इसकी तवालत आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2.5 पारे बनती है। इतनी लंबी ये एक सूरत है और ये पूरा पारा इसी सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला इस सूरत को देखेंगे। इस सूरत के अंदर आप बहुत सारे मजामीन देखेंगे, कोई एक मजमून नहीं कह सकते हम कि ये थीम है इस पूरी सूरत का, मगर बहुत सारे मजामीन इसमें डिस्कस होंगे। हत्ता कि हम ये कह सकते हैं कि कुराने करीम में जितने भी मजामीन आगे आने वाले हैं उनके एक तरह की समरी इस सूरत में बयान कर दी गई है। ये एक मदनी सूरत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाजिल हुई, और इसमें इबादात का भी जिक्र है, इंसान की माशी जिंदगी का भी जिक्र है, उसकी इकोनॉमी का भी जिक्र है, असूल है, अहकामात हैं और अखलाकियात पे भी है बात की गई, और निजामे ममलिकत को चलाने के लिए जो असूल चाहिए उनके पर भी बात की गई है। मुसलमान की जिंदगी की फलाह किस चीज में है उस पर भी बात की गई भी है। बहुत सारे मजामीन इस सूरत में आएंगे। इसी सूरत में कुराने करीम की सबसे अजीम आयत आयत अल कुर्सी भी है, और सबसे लंबी आयत आयत दईन भी है, और आखिरी नाजिल होने वाली नजूल के इतबार से जो आखिरी आयत है वो भी इसी सूरत के अंदर मौजूद है। इस सूरत में आप बहुत सब कुछ सीखेंगे, बहुत सारे हलाल और हराम भी सीखेंगे, और इसके अलावा इस सूरत में आप मग़दूब अलैहिम, जिन लोगों पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ उनके ऊपर जो चार शीट है वो भी आप देखेंगे, और उसका मकसद यही है कि आपने मग़दूब अलैहिम के रास्ते को अच्छी तरह से पहचान लेना है कि कौन सा वो रास्ता है जिसकी वजह से एक कौम अल्लाह ताला के गज़ब में मुलविस हुई और जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की नजरों से गिर गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मकाम खो दिया। हमें कभी भी उनका रास्ता इख्तियार नहीं करना, इसलिए खोल खोल के उनके जराइम की फहरिस्त आप इस बारे में खास तौर पे देखेंगे। तकरीबन 100 आयतें आप इस बारे में बनी इसराइल जो यहूद थे उनके बारे में देखेंगे, और ये भी देखेंगे किस वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपना गजब नाजिल किया। इस सूरत का नाम अल बकारा, बकारा का मतलब होता है गाय, ये बकरा नहीं है, बकारा है। आप देखें गाय मतलब ये नहीं कि इस सूरत में सारा जिक्र गाय का है। याद रखिए सूरतों के जो नाम है उनका उनके थीम से ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये नाम उनकी पहचान है। जैसे किसी का भी नाम कुछ रख दिया जाए, अगर मसलन कि किसी का नाम साजिदा है तो वो जरूरी नहीं बहुत ज्यादा सजदे करने वाली हो। तो इस तरह ये सूरतें नाम इनके पहचान के लिए, इनके थीम के साथ ताल्लुक नहीं। हाँ अलबत्ता इसमें एक वाक्या जरूर है जो गाय का है। ये सूरत ऐसी है, इसकी फजीलत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा कुरान का कोहान है, यानी कोहान जैसे ऊंट का कोहान होता है ना, बुलंदी, और इसकी बुलंदी का ये आलम है कि इसकी एक एक आयत के साथ 80-80 फरिश्ते नाजिल होते थे। 80 फरिश्ते हर आयत के साथ, बिलखसूस आयतल कुर्सी जो है वो तो खास तौर पे अल्लाह ताला के अर्श के नीचे से दी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की तिर्मिजी की रिवायत है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी कि वो वीरान उनमें कोई कुरान ना पढ़ा जाए। जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां शैतान दाखिल नहीं हो सकता। ये जो हमारे घरों में झगड़े, बेसकूनियां, बेचैनियां, अल्लाह ताला की नाफरमानियां, नेकी में सुस्ती, गुनाहों पे दलेरी, बच्चे बात नहीं सुन रहे, ये इस वजह से कि घरों में शैतान दाखिल हो जाता है। लेकिन जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए वहां पे शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को ऐसा ना पाऊं कि वो पैर पे पैर चढ़ाए पढ़ता चला जाए लेकिन सूरतुल बकरा ना पढ़े, यानी और चीजें पढ़ रहा है, रिलैक्स बैठा हुआ है, लेकिन सूरतुल बकरा नहीं पढ़ता। सुनो जिस घर में ये सूरह मुबारक पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग खड़ा होता है। सबसे बदतरीन घरों में वो घर है और सबसे जलील तरीन घर वो है जिसमें अल्लाह की किताब की तिलावत ना की जाए। नहीं, अगर आपके घर में मामूल नहीं है ना अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करने का, तो आपका घर बदतरीन घर है, ये मानना है इसका। और जिसमें सूरतुल बकरा ना पढ़ी जाए वहां शैतान आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, ये नहीं कि जब घर खरीदे तो एक दफा बस सबको बुला के आए जी, आए आप कुरान खानी कर लेते हैं ताकि हमारे घर में बरकत हो जाए, सारी जिंदगी के लिए वही पढ़ा हुआ कुरान काफी है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में हमेशा कुरान पढ़ते रहें, वरना जो घर ऐसा हो जिसमें किताबुल्लाह की तिलावत ना की जाए फिर वो बदतरीन घर, अब चाहे जितना भी उसको सजा ले। और जिस घर में शैतान दाखिल हो जाए उसमें क्या बरकत रह जाएगी। तो अगर उसको भगाना है तो उसका यही तरीका सूरह बकरा पढ़ा करें। अब सुस्तियां इतनी हो गई हैं, हम पढ़े कैसे, ये इतनी लंबी सूरह है तो थोड़ा ही पढ़ लें। आप देखें कि कम अज कम आप जितना हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया उतना ही पढ़ लें। और उनका क्या फरमान है कि जो शख्स सूरतुल बकरा की पहली ये आयात पढ़ लेता है, यानी अलिफ लाम से लेके अल मुफ्लिहून तक, और आयतल कुर्सी, और दो आयतें उसके बाद की जो आयतल कुर्सी के बाद की, और तीन आयतें सबसे आखिर में जो है, ये सब 10 आयतें रात के वक्त पढ़ ले, उस घर में शैतान उस रात दाखिल नहीं हो सकता। और उसे और उसके घर वालों को उस दिन शैतान या कोई बुरी चीज सता नहीं सकती। अब इतनी तो पढ़ सकते हैं ना। ये आयतें मजनून पे पढ़ी जाए तो उसका दीवानापन भी दूर हो जाता है, यानी अगर कोई इस तरह किसी के ऊपर कोई दौरा पड़ गया जुनून का तो उसके ऊपर भी ये आयतें पढ़ी जाए। तो इनको नोट कर लीजिए। अब कम अज कम हमने ये आयतें अमल की बातों में लिख लें कि हमने कम अज कम रात को तो जरूर पढ़नी। याद हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हैं तो अब याद कर लेंगे हम, और वरना जब तक नहीं याद होती हम एक जगह पे कॉपी पेस्ट करके अपने फोन में ही रख लें और फिर उससे पढ़ लिया करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबरानी की, इब्ने मर्दवे की, इब्ने हब्बान में भी ये रिवायत है कि जिस तरह हर चीज की बुलंदी होती है, कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा। आप देखें ना, जब आप किसी चीज की बुलंदी पे पहुंच जाते तो वहां से क्या होता है, हर चीज दूर दूर तक नजर आने लगती है। और बुलंदी हाइट वैसे भी अजमत की बात है, कुरान की बुलंदी सूरतुल बकरा। जो शख्स रात के वक्त इसे अपने घर में पढ़े, 3 रातों तक शैतान उसके घर में नहीं जा सकता, और जो दिन को पढ़ ले तो 3 दिन तक शैतान उसके घर में कदम नहीं रख सकता। तो इस यकीन के साथ पढ़िए कि इसके बाद शैतान से तो कम से कम हमें निजात मिल जाएगी, और शैतान अगर घर में नहीं दाखिल हुआ तो घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हो, और फिर दूसरे सूरह बकरा आपके घर में पढ़ी जानी चाहिए। अगर घर के दूसरे अफराद भी इसमें हिस्सा ले लें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके हर एक पढ़ता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी में रिवायत है कि हजरत उसैद बिन हुजैर ने एक मरतबा रात को सूरत बकरा की तिलावत शुरू की, उनका घोड़ा उनके पास ही बंधा हुआ था, उसने उछलना कूदना और बिदकना शुरू कर दी। आपने खिराक छोड़ दी, घोड़ा भी सीधा हो गया। आपने फिर पढ़ना शुरू कर दी, घोड़े ने फिर बिदकना शुरू कर, फिर आपने पढ़ना रोक दिया, घोड़ा भी ठीक हो गया। तीसरी दफा भी यही हुआ, और चूंकि उनका बेटा यहया घोड़े के पास ही लेटा हुआ था, इसलिए उनको डर हो कि कहीं बच्चे को चोट लग जाए, तो कुरान का पढ़ना बंद करके उसको उठा लिया। आसमान की तरफ देखते हैं तो जानवर के बिदकने की क्या वजह हुई कि क्यों ये जानवर बिदक रहा है? आसमान की तरफ देखा तो कुछ उनको नजर आया। अब सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके वाकया बयान किया, आप सुनते जाते थे, फरमाते जाते थे, उसे पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। तो उसैद ने फरमाया, या रसूल्ला, तीसरी दफा के बाद तो याह्या की वजह से मैंने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। अब जो मैंने निगाह उठा के देखी, देखता हूं एक नूरानी चीज है, सायादार, बादल की तरह की है, कोई मैंने नूरानी चीज है, जैसे बादल होता है उस तरह, और उसमें जैसे चिरागों की रोशनी है, जैसे आप समझ लें एक शैंडलियर टाइप चीज, एक गोल सा बड़ा सा शैंडलियर आसमान में खड़ा जिसमें छोटे छोटे चराग है। बस मेरे देखते ही देखते वो ऊपर टूट गया। आपने फरमाया, जानते वो क्या चीज? वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी आवाज सुन के करीब आ गए थे। अगर तुम पढ़ना बंद ना करते तो वो सुबह तक ऐसे ही रहते, हर शख्स उनको देख लेता, किसी से छुपने नहीं थे। इसी तरह साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया आता है कि एक मरतबा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पिछली रात हमने देखा सारी रात हजरत साबित का घर ऐसे जैसे नूर है इस तरह चमक रहा था, और चमकदार रोशन चराहों से जगमगा रहा था, तो लोगों ने खुद देखा। आपने फरमाया, उन्होंने रात को सूरह बकरा पढ़ ली होगी। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा हाँ, उन्होंने कहा हाँ सच है, रात को मैंने सूरह बकरा की तिलावत की थी। तो ये इतनी बड़ी फजीलत वाली सूरत है, हम तवज्जो ही नहीं देते इन सूरतों के ऊपर, इनकी हम अहमियत को ही नहीं समझते। सही हदीस से साबित है, और बिल्कुल इसकी कोशिश नहीं करते कि थोड़ी सी सूरत पढ़ के रात को तिलावत थोड़ी सी कर लें इनकी। फिर आप ये भी सुन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सूरतुल बकरा सीखो, इसको हासिल करना बरकत है। आप बरकतें ढूंढते किधर किधर फिर रहे हैं, मारे मारे वो इधर फलां मेरे घर तशरीफ लें बरकत हो जाएगी, फलां चीज घर में लटका लूं बरकत हो जाएगी, फलां वजीफा किसी ने बता दिया उसे बरकत हो जाएगी। आपको पता नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरह को सीखो, इसका सीखना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है, यानी हसरत होगी आपको, आपको पता ही नहीं ना आप कितनी बड़ी चीज छोड़ रहे हैं। ऐसे आपके हाथ से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, बस आपके हाथ में थी, बस वो निकल गई, तो कितनी हसरत होती है कि हाय इतने बड़े फायदे की चीज मेरे हाथ से चली गई। ये सूरत इतनी फायदामंद है, इतनी इसमें खैर है, जिसने इसको छोड़ दिया ना, हसरत है उसके लिए। वो हसरतें पता नहीं यहाँ दुनिया में तो ना पता चलेंगी, आखरत में जाके पता चलेंगी कि कितना बड़ा फायदा था इसमें। फिर फरमाया जादूगर उसकी ताकत नहीं रखते, तो अभी आपको क्या पता, एक तो शैतान दाखिल नहीं होता, दूसरे जादूगर के अंदर ताकत नहीं है कि वो इस सूरत को पढ़ने वाले के ऊपर जादू कर सके। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद आपने फरमाया सूरत अल बकर और सूरत अल आले इमरान ये सीखो, ये दोनों क्या है, ज़हरवईन, यानी दो नूरानी सूरतें। किसी सूरत के बारे में ये नहीं कि वो नूरानी सूरतें, फरमाए इनको सीखो, ये दो नूरानी सूरतें हैं, तो सीखने का कहा गया, क्योंकि आप सीखेंगे इनको तो आपको पता चलेगा इनमें क्या। अपने पढ़ने वाले पर साइबान या बादल या परिंदों के झुंड की तरह कयामत के रोज साया करेंगे। सुभान अल्लाह, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, ये बादलों की सूरत नहीं है, परिंदों का झुंड होगा, या साइबान जैसे कोई छतरी सी होती है, इस तरह ऊपर आके शेड देंगी। कुरान पढ़ने वाला जब कब्र से उठेगा तो देखेगा एक नौजवान नूरानी चेहरे वाला है, और वो उसके पास आके खड़ा हो जाएगा। ये कहेगा आप कौन है, मैं तो नहीं आपको जानता। वो कहेगा मैं कुरान। इस तरह से कुरान साथ हो जाएगा, ये जो कुरान पढ़ा हुआ है ये वक्त जाया नहीं है, ये जो कुरान सीखने में वक्त लग रहा है चाहे जितना भी लग जाए, ये ही आपका सरमाया है, इसी के ऊपर आप एक दिन खुश होंगे, बाकी सारा वक्त जाया, यही है जो बच गया। हम सोचते हैं जाया हो गया, जाया ये नहीं हुआ, जाया वो हो गया जो आपने इधर उधर के कामों में लगा दिया, वो जाया हो गया, ये तो आपने बचा लिया। मुसनद अहमद की रिवायत है कुरान पढ़ा करो, ये अपने पढ़ने वालों के लिए कयामत के दिन शिफात करेगा। और दो नूरानी सूरतें फिर इन्हीं का नाम लिया, अल बकरा और आले इमरान को पढ़ते रहा करो। अब पढ़ेगा कौन, जो इसको हिफ्स कर लेगा ना वो पढ़ेगा, जाहिर है वो दोहराई करेगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करेगा तब भी कितनी दफा पढ़ेगा, इतना कोई सारी जिंदगी में भी ना शायद पढ़ सके जितना हिफ्स करने वाला इसको पढ़ता है। इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि इनको हिफ्स कर ले, और इसीलिए एक कोर्स का हिस्सा ये भी है कि इन सूरतों को हिफ्स किया जाए। ये दोनों कयामत के दिन इस तरह आएंगी, गोया साहिबान है, अबर है, पर खोले हुए परिंदों की जमातें हैं, अपने पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगी, सिफारिश करेंगी, यानी उस दिन जब कोई बोल नहीं सकेगा, ये सूरत सोचे खड़े होके, जब हमें खुद में ताकत नहीं होगी बोलने की कि हम क्या बोलें अपने लिए, हमसे तो जरा सा कोई यानी किसी कोई रोबदार इंसान आ जाए सामने तो ताकत नहीं होती बोलने की, कोई बड़ा पुलिस अफसर खड़ा हो जाए ताकत नहीं होती बोलने की, कोई वजीर मुशीर आ जाए तो कहाँ बोलते, अल्लाह ताला की अदालत में कौन बोल सकेगा। लेकिन ये दोनों परवरदिगार के आगे डट जाएंगी, ये आता है हदीस में, डट जाएंगी और सिफारिश करेंगी, हटेंगी नहीं। अल्लाह अकबर। फिर यजीद बिन अस्वद कहते हैं कि इन दोनों सूरतों को दिन में पढ़ने वाला दिन भर निफाक से भरी रहता, रात को पढ़ने वाला सारी रात निफाक से भरी रहता, तो ये निफाक से भी बचाने वाली कितनी बातें आपको पता चली। देखें बरकत भी देती हैं, शैतान के हमलों से भी महफूज रखती हैं, शैतान आपके घर में नहीं आएगा, फिर जादूगर अगर आपके ऊपर जादू करना चाहेगा तो वो जादू नहीं कर सकेगा, इतनी बाबरकत है। ये तो दुनिया के फवायद है, और आखरत का फायदा कितना बड़ा है, वो आखरत का फायदा ये है कि ये उस दिन सिफारशी बन जाएंगी, ये उस दिन अबर बन जाएंगी, बादल बन जाएंगी, साया देंगी जब कोई साया ना होगा। तो बहुत ही अजीम सूरतें हैं जो हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सात लंबी सूरतें आ रही हैं सूरह बकरा से आगे तक, इनके बारे में फरमाया था कि ये सात लंबी सूरतें तौरात की जगह मुझे अता की गई। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, उसका अमीर सबसे छोटी उम्र वाले को बनाया, क्यों, उनको सूरत अल बकरा याद थी, इतनी बड़ी फजीलत है जिसके सीने में कुरान है उसकी, और खास तौर पे सूरत अल बकरा। तो अगर आप बाकी कुरान नहीं भी याद करते, सूरत अल बकरा को अहमियत दीजिए, और इन फजाइल को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर शौक पैदा हुआ होगा कि मैं भी इस सूरत को याद करूं, महफूज कर लूं अपने सीने में। और सिर्फ जिनको याद है वो सिर्फ याद करके छोड़ नहीं देंगे, पढ़ते रहना है तभी बरकतें मिलेंगी, पढ़ते रहना है तभी शैतान पास नहीं आएगा, पढ़ते रहना तभी जादूगर आप पे जादू नहीं कर सकेंगे, और तभी आपके घर के अंदर आप देखेंगे आपको बरकत महसूस होगी। इसकी बरकतें हैं, आप पढ़ना शुरू करें, आपके वक्त में बरकत होगी, आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी फैमिली में बरकत होगी, आपके घर से ये शैतान की नहुसत खत्म होगी। पढ़ते रहें और याद करना शुरू कर दें, और कभी ये ना सोचे मैं नहीं याद कर सकती, हम सब याद कर सकते हैं, थोड़ी सिर्फ सिर्फ तवज्जो की जरूरत है याद करने के लिए, क्या आपको बार बार दोहराना पड़े, और दोहराना ही तो हमारा मकसूद है कि हम इसको ज्यादा ज्यादा पढ़ते रहें। दोहराई करेंगे तो जाहिर है अजर भी मिल रहा है आपको, और इंशाल्लाह वो ताला आपको बरकतें भी हासिल होती जा रही हैं। तो अब हम इंशाल्लाह वो ताला शुरू करते हैं इस सूरत को, जो मदनी सूरत है, आयात 286, और इसके बड़ी बरकतें हैं, इसका हम मुतालिया इंशाल्लाह करते हैं। आप लोग जरूर चाहेंगे कि जहरा, इस सूरत एक सूरत जहरा है, सूरत जहरा और जहरा वईन, और दोनों सूरतें अलबकरा और आले इमरान के, इनको सीखेंगी और इन पे अमल भी करें। और हिफ्ज का मकसद भी सिर्फ ये नहीं कि हम पढ़ते जाएं, बल्कि ये कि इनका माना जब हमें पता होगा तो इंशाअल्लाह ताला अमल करना भी आसान होगा, और चूंकि हम बार बार दोहराई करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि वो ये बात भी थी जिसके ऊपर मैंने अमल करना। और जैसा कि हमने पहले बात की थी, हर सबक के बाद हम लिखा करेंगे हमने अमल की बातें क्या करनी है जो आज के सबक में से हमने ली, तो पहले तो इसकी फजीलतों में से अमल की बात लिख लीजिए, और अमल की बात अपने सबक में साथ ही ना लिखें, बल्कि या तो अपने नोटबुक है या अपने फोल्डर है या अपना पारा है उसके एंड में लिखें हर सबक के साथ, या हाईलाइट करके उसी के सबक के एंड में हो, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो, वाजे हो, ताकि ये ना हो कि नोट्स के अंदर ही गुम हो जाएं बातें कि हमने क्या सबक लिए थे इसमें से, या अमल की बात हमने क्या चुनी थी। तो अब की आज की अमल की बात यह है कि आज से बस मैंने क्या करना है, सूरतुल बकरा की हर रात तिलावत करके सोना, दिन में भी इसकी तलावत की कोशिश करनी है। हमारे घर कब्रिस्तान ना बने, हमारे घर बदतरीन और जलील तरीन घरों में ना हो जिनमें कभी कुरान ही नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, और बुलंद आवाज से पढ़नी, और जितना आप इब्ने मसूद ने फरमाया नहीं तो उतना ही पढ़ लें। दूसरा हम इंशाअल्लाह ताला ये किया करेंगे कि जब भी हम कुरान करीम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम सीखते जा रहे हैं ना, साथ साथ हम दुआएं करते जाएंगे, कोशिश यही होगी हर हर आयत के साथ ही हम दुआ करते जाएं, तो ये भी हम अपना मामूल बनाएंगे। कोई पता नहीं है, हो सकता है वो वक्त कबूलियत का हो और हमारी वो दुआ उस वक्त कबूल हो जाए, वैसे भी नेकी के काम करते वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरतुल बकरा जब शुरू करने जा रहे हैं तो पीछे हम सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से दुआ कर चुके हैं कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे दे सिराते मुस्तकीम की। तो देखें, अब हमने जब दुआ मांगी, दुआ का जवाब फौरन आ गया, और दुआ का जवाब अलिफ लाम मीम से लेके अन्नास तक सारा कुरान इसी दुआ का जवाब है, इसी दुआ का जवाब है कि आपने हिदायत मांगी थी ना, ये लो हिदायत। अब हिदायत का रास्ता आपको अल्लाह तआला ने दिखा दिया, अब इसके ऊपर चलने की भी दुआ हमने मांगनी है कि अल्लाह तआला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम जो दुआ में मांगते रहें तो साथ साथ ये जहन में हो कि जैसे जैसे पढ़ रही हूँ अल्लाह तआला अमल की भी इसकी तौफीक अता फरमाता जाए कि चला भी देना इस रास्ते पर। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ का जवाब इस सूरत में दे दिया है कि पूरा कुरान आपके सिराते मुस्तकीम है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम क्या है? इनको कहते हैं डिसजॉइंटेड लेटर्स या हरूफे मुकत्तआत। कता से है, कता करना, डिसजॉइंट अलग अलग करना, क्योंकि हम इन हरूफ को अलग अलग पढ़ते हैं। अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग, हम इनको अलग नहीं पढ़ते, इसलिए इनको हरूफे मुकत्तआत कहते हैं। और ये कुल 29 सूरतों से पहले आए हैं। ये यहाँ पे तो 3 लेटर्स हैं जो हरूफे मुकत्तआत में हैं, कहीं 5 भी हैं, कहीं 1 है, कहीं यासीन 2 है, लेकिन मैक्सिमम 5 है। काफ, हा, या, आइन, सौद, या हा, मीम, आइन, सीन, कौफ। और हरूफे मुकत्तआत, यानी कि जितने 28 हरूफ अरबी में है, सब से हरूफे मुकत्तआत बने में नहीं, सिर्फ 14 हरूफ हैं जो हरूफे मुकत्तआत में यूज हुए हैं, सिर्फ 14। अब आप देखेंगे कि अक्सरियत मक्की सूरतों से पहले ये हरूफ आए हैं। जहां पे भी आए हैं ना हरूफ मुकत्तआत, तो मक्की सूरतों से पहले आए, वो मक्की सूरतें हैं। यानी सिर्फ ये 2 मदनी सूरतें, सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान, इन दोनों में जो मदनी सूरतें, इनमें हरूफ मुकत्तआत आए। अलिफ लाम मीम से सूरतुल बकरा भी स्टार्ट हुई, सूरतुल आले इमरान भी, और सूरत अलिफ लाम मीम सजदा जो हम रात को पढ़ते हैं, और जुमे के दिन भी फर्ज नमाजों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में सूरत अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ा करते थे। तो ये हरूफ मुकत्तआत अलिफ लाम मीम, ये क्या हरूफ है और क्यों आए हैं? तो ये हम पहले समझ लें कि इनका माना हमें ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ना किसी सहाबी से मिलता है ऐसा माना जिस पे सारे सहाबा मुत्तफिक हों, ना ही कुरान करीम में इनका कोई माना बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई माना नहीं है। इस कलामे पाक में कोई एक हर्फ भी इजाफी नहीं, फालतू नहीं, बेकार नहीं। हरूफे मुकत्तआत का भी कोई माना है, कोई हिकमत है, लेकिन हमें वो मालूम नहीं है, हमें चूंकि बताई नहीं गई है, लेकिन हिकमत है जरूर, कोई बात ऐसी है जरूर जो कि वाकई माने रखती है। अब हम जब ये पढ़ते हैं तो अब हम सोचते हैं कि ये कुरान करीम तो हमारी हिदायत के लिए आया है, और हिदायत का मतलब तो यह कि मुझे बात समझ आनी चाहिए, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आए कि ये क्या माना है इनका, तो फिर मुझे इनसे कैसे हिदायत मिलेगी? तो बात यह है कि बाज चीजें इस कुराने करीम में ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आपकी हिदायत के लिए ही है वो, आपको उनके ऊपर अमल करना है बगैर चूं चरां किए। यहां शुरू में ही बता दिया गया कि जैसे आपको इसका माना नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप इसको मानकर आगे जा सकते हैं, जो यहीं पे स्टॉप हो गया, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही, मैं तो नहीं मानता, तो फिर वो यहीं से वापस चला जाए। कुरान के स्टार्ट में ही आपको ये समझा दिया गया कि कुराने करीम की तरफ बड़ी आजी के साथ आना, ऐसे मत आना कि अच्छा जो चीज मुझे समझ आएगी ठीक है वो मैं मानूंगा, जो नहीं समझ आएगी मैं तो नहीं मानता। पहले मुझे समझ आनी चाहिए, ये आजकल बहुत ट्रेंड हो गया ना कि आप मेरी अकल में नहीं पड़ती तो फिर मैं क्यों मानूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस चीज की। तो हम अपने बॉस से कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आपने मुझे ये काम क्यों कहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला के आगे क्वेश्चन करते हैं, पहले समझाएं फिर उसके बाद मैं मानूंगा। नहीं, यहीं पे आपने सबसे पहले कुरान शुरू होने से पहले ही, जैसे आप मस्जिद में एंटर होने से पहले ही जूते उतार देते हैं, एटिकेट्स है ना, तो कुरान पाक शुरू करने से पहले ही एटिकेट्स हैं, आजी आजी में आ जाओ, झुक जाना, कोई बात समझ ना भी आए तब भी आपने क्या कहना, समय ना वाता, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया। यानी कोई अहकामात यहाँ पे जरूर आएंगे जो हो सकता है आपको हिकमतें ना समझ आए, और बहुत सारे आएंगे, ये क्या बात हुई, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों कह दिया गया, ये क्यों, नहीं इतराज नहीं, बस वहीं पे आपने कहना मुझे समझ आए या नहीं आए मैं मानती हूं, जैसे आपने अलिफ लाम मीम को मान लिया। और आपने क्या दिया, अल्लाहु आलमु बि मुरादी, अल्लाह ताला जानता है इसकी मुराद क्या है, इससे माना क्या निकलता है, अल्लाह ताला जानता है। इसी तरह आगे भी आपके जितने अहकाम आता है आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, आपने ये कुछ एतराज नहीं करना, बल्कि यही कहना अल्लाह ताला जानता है मुझे नहीं पता, क्योंकि इंसान जान ही नहीं सकता अल्लाह ताला की हिकमतों को, वो तो सारे कुछ सब कुछ समझ ही नहीं सकता। तो फिर इसका हम देखते हैं मुफस्सिरीन ने क्या बयान किया कि इनको लाने का मकसद क्या है, क्यों आए हैं ये यहां पे। एक, मैंने वजह आपको बयान करते। नंबर टू, बाज मुफस्सिरीन ने लिखा ये अल्लाह ताला के नाम है और उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अलिफ से अल्लाह, लाम से लतीफ, मीम से मजीद, इस तरह से करके उन्होंने डिफरेंट इसकी तावीलें की हैं, लेकिन कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कहाँ से पता चलेगा यही बात है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। कुछ ने लिखा कि ये सूरतों के नाम है, कुछ ने कहा कि अरबों को चैलेंज किया गया जो जुबान के माहिर अपने आप को समझते थे और बाकियों को अजमी कहते थे यानी गूंगे कहते थे, तो कुरान अब तुम्हारी जुबान में ही नाजिल हुआ और 28 में से सिर्फ 14 हरूफ ऐसे हैं जो हरूफ मुकतात में आए हैं, अब तुम सारे हरूफ में से सब यूज करके तुम कोई कलाम इस जैसा ले आओ तो किसी को ताकत नहीं। तो एक चैलेंज का अंदाज है। फिर एक और वजह बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि हर हर्फ का एक माना है, मगर वो ऐसे ही है जैसे कि कोड्स होते हैं ना, सीक्रेट्स होती हैं, अब कोड को खोलने की चाबी हमारे पास नहीं, या एब्रिविएशंस होती हैं तो उसकी खोलने की हमारे पास चाबी नहीं है, लेकिन है अल्लाह ताला के कोड्स। इस पे सब उलमा मुत्तफिक हैं कि ये अल्लाह ताला के राज हैं और अल्लाह ताला इनका माना जानता है। तो अब आपने जब ये समझ लिया कि हम अल्लाह ताला की जात को पूरी तरह नहीं समझ सकते, उसका इदराक नहीं कर सकते, जब उसकी जात के बारे में हम जानने से कासिर हैं, बेबस हैं, तो उसके कलाम को भी हम नहीं समझ सकते उस तरह से जैसे कि उसकी जात को हम नहीं समझ सकते, जैसे उसकी जात ऐसी है कि हम दंग रह जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं, हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, हम कहते अल्लाह नहीं समझ सकते, तो उसके कलाम के आगे भी हम बेबस हैं, हम नहीं समझ सकते पूरी गहराई तक नहीं जान सकते। हाँ, हिदायत पाने के लिए हम जितने हद तक कुरान करीम को समझ लेते हैं, अल्लाह ताला ने उसको हमारे लिए आसान कर दिया, मगर इसमें इतने राज हैं कि सारी जिंदगी भी हम इसी के अंदर खपा दे तो इसके राज नहीं जान सकते। जैसे मैंने आपको हदीस बताई थी कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर जैसे फजीलत है, इसी तरह उसके कलाम को हर कलाम पे, हर इल्म पे फजीलत है। ये कलाम उसका इल्म है और हम कैसे किसी तरह पे से भी अहाता कर सकते हैं इसका। इसी वजह से आप देखेंगे आज तक इतनी तफासीर लिखी गई, एक एक सूरत पे इतनी तफासीर है, हर एंगल से देखा गया, हर एक ने अपने मुताबिक तफसीरें की हैं, मगर हम ये नहीं कह सकते कि तफसीर मुकम्मल हो गई, अब कोई और गुंजाइश नहीं है। जितनी आप पढ़ते हैं इतना ही आपका जहन खुलता जाता है, अल्लाहु अकबर, एक एक आयत से कितनी बातें निकली। ग्रामेटिकली देखा गया, उसको एक तफसीर के एंगल से देखा गया, माने के एंगल से देखा, बहुत तरह से देखा गया, फिर भी इस इंसानी इल्म कहाँ से रहे कि एक आयत को भी ऐसे कर दे कि अब बस पूरा मैंने इसका हक अदा कर दिया, ये मुमकिन नहीं है। तो अलिफ लाम मीम हमने इसको ऐसे ही मान लिया, चाहे हमारे जहन में इसका माना नहीं भी आता, हमें इसकी हिकमत नहीं भी पता चलती। एक और बात जो मुफसरीन ने लिखी है वो ये लिखा है कि देखें, मुशरिकीन ने मक्का ने हर चीज पे इतराज किया, लेकिन कुरान पाक में हरूफ मुकतात उतरे हैं, लेकिन उन्होंने, हम नहीं देखते कहीं पे भी इस बात पे इतराज किया हो कि ये क्या हरूफ हैं और ये किस बात का, इससे क्या मतलब और क्या माना बनता है और क्या, और ऐसे इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। इसका मतलब ये पता चलता है कि अरबों में इस चीज का आम रिवाज होता था कि वो कलाम करने से पहले ऐसे हरूफ लाते थे जिससे उनकी धाक बैठ जाए लोगों पर कि मेरी बात इन हरूफ से बनी हुई है, इस तरह से करके वो बात करते थे। और एक वजह मुफस्सिरीन ने ये भी बयान किया है कि लोगों की तवज्जो ग्रैब करने के लिए एक दफा जब कहा गया सुनो, जैसे कहा जाता है इस तरह से अलिफ लाम मीम करके बात की जाती है, तो वो भी एक वजह लिखी। अब जहां पर मैंने आपको चैलेंज की बात बताई तो उन्होंने इसी पे लिखा है मुफस्सिरीन ने कि इसी वजह से आप सिवाय एक आध जगह के आप देखेंगे कि हर जगह पे जहां हरूफ मुकत्ता आए हैं वहां पे उसके बाद कुरान पाक का जिक्र आया है। इसका मतलब ये चैलेंज ही है कि देखो ये है ये कुरान और तुम भी इन हरूफ से मिला के कुछ ले आओ। तो ये हमारी अपनी कयास की बातें, बाकी इमाम कुर्तुबी जैसे फरमाते हैं कि अल्लाह तला के राज हैं, जब अल्लाह तला ने इसके माने नहीं बयान किए तो हम इसके मतलब के पीछे क्यों पड़ जाएं, क्यों इसमें ही अपने आप को खपाएं। बस हमारा ईमान है और इतना ही काफी है कि हम ये मानते हैं अल्लाह तला की तरफ से इनका माना भी है, और चाहे ये हरूफ जिनकी हमें समझ कुछ नहीं आ रही ये भी आप पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तीन हरूफ को अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता ये एक है, ये अलिफ अलग लाम अलग और मीम अलग, अलिफ के ऊपर 10 ने किया, लाम पे 10 ने किया और मीम पे 10 ने किया, मैंने यानी कुरान करीम को अगर बगैर समझे भी पढ़ा जाए सवाब फिर भी मिल जाएगा, नेकी फिर भी मिलेगी। हाँ, हिदायत नहीं मिलेगी मगर नेकी मिल जाएगी आपको। तो ये हरूफ मुकत्तात की बात हुई। अब आगे है ज़ालिका, ज़ालिका अब साथ साथ मैं आपको माना बताऊंगी, साथ ही मैं आपको इसकी तफसीर भी बता दूं। ज़ालिका वो, ये है इसम इशारा बाईद, यानी दूर की चीज के लिए जब हम कहते हैं ना वो देखो, असल में वा है जो वो के लिए, ल है जो दूर की चीज के लिए, और का है यानी एक बंदे को जब आप दिखाया जाए, जैसे इसीलिए जालिकुम भी आता है, यानी बहुत सारे लोगों को आप कुछ दिखा रहे हैं, तो का यानी एक को दिखाया जाए, जैसे मैं आपको कहूं सुनो वो, इस तरह से। तो जालिका वो, इसम इशारा बाईद, अल किताब खास किताब के लिए, यानी ये एक अलिफ लाम लग जाने की वजह से किसी खास किताब की तरफ इशारा होता है, यानी अब ये इसम मार्फा बन जाता है, ये नहीं कि कोई भी किताब। और किताब का माना क्या होता है, या तो लिखी हुई चीज या महफूज चीज। अल किताब ला नहीं, रईब कोई शक, और रईब वो शक जो मुस्तरब करते, जो बेचैन करते इंसान। अब आगे आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं मुआनका, ठीक है। मुआनका का मतलब क्या होता है, ये किसी वर्ड के आगे भी और पीछे भी होते हैं, कुरान करीम में आप देखेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये वर्ड पीछे से भी जुड़ा हुआ है, जो इसके बीच में वर्ड है फी ही यानी, और आगे से भी जुड़ा हुआ, यानी इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ला रई बाफी, या ये भी आप पढ़ सकते हैं दालिकल किताब ला रईब, और फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, फी ही को आगे मिला ले या फी ही को पीछे मिला ले, दोनों सूरतों में ठीक है। ठीक है, फी और ही दोनों मिल गए तो फी ही बन गया, फी में ही इस, हुदन हिदायत है, और ये तो उर्दू में भी हम बोलते हैं, लिल मुत्तकीन ली लिए, अल मुत्तकीन मुत्तकीन के। यहां तक देखते हैं तफसीर इसकी। ज़ालिका वो अल किताब किताब है, अब वो किताब है जबकि किताब तो हमारे सामने पड़ी हुई है, तो फिर ज़ालिका दूर का इशारा क्यों किया गया, हादा है करीब का, ये यहां पे हादा क्यों नहीं आया। इसकी एक वजह मुफस्सिरीन ने ये बयान की कि बाज दफा जालिका बमाना हाजा ही होता है, यानी जैसे हम कहें ये है वो किताब, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे माना यही है, वो का माना उस तरह से नहीं है, ये का माना ही। दूसरा, अरबों में किसी चीज की जब अजमत बयान करनी होती थी तो हाजा की जगह जालिका का लफ्ज लाया जाता था, जैसे आपने किसी को अजमत देनी हो तो तुम की जगह आप कह देते हैं, ठीक है, किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी हो तो वो कहते हैं कि इसी तरह ये रिस्पेक्ट के लिए जालिका लाया गया। एक और बात की गई, ये डिफरेंट मैं आपको तफसीरों की बात बता रही हूं, आप इन सारे पॉइंट्स को ही नोट कर सकते हैं कि क्यों यहां पे जालिका आया। एक और पॉइंट मुफस्सिरीन ने बयान किया कि जालिका का इशारा हरूफ मुकत्तआत की तरफ है, कि अलिफ लाम मीम आपने जो पढ़ा है ना, जालिका वो, ये जो आपने पढ़े थे ये हैं अल किताब, ये इस किताब से मुतालिक है। तो एक और बात ये की गई कि अभी जो एक दिन सिरातल मुस्तकीम कहा गया था कि जो तुमने दुआ मांगी थी, तो ये है वो किताब, ये वो जालिका का इशारा इस किताब की तरफ है जो तुमने मांगी थी, वो दुआ का जवाब ये किताब है। इसी तरह ये भी कि वो जो तौरात और इंजील में कुरान करीम का जिक्र था और उसका इंतजार यहूदी करते थे, तो वो जो वो किताब मांगते थे, जालिकल किताब वो किताब है, और एक और भी इसका माना ये किया गया कि यानी ये इस कुरान जो आपके हाथ में, इसको नहीं कहा जा रहा, बल्कि वो किताब जो लौहे महफूज में ये कुरान आपको पता है लिखा हुआ है, उसकी तरफ इशारा है जो सातवें आसमान से उतरी है, लौहे महफूज में जो है ना, कि वो किताब कुरान करीम का जिक्र कुरान में आता है ना, तो हादल कुरान कहा जाता है, और जब किताब आता है तो दालिकल किताब कहा गया, तो फिर लगता है कि ये लौहे महफूज में जब जहां पे कुरान महफूज है उस किताब को कहा जा रहा है, वो लिखी हुई भी है वो महफूज भी है। दालिकल किताब, तो अब किताब का मैंने आपको बता दिया ना, किताब हर जगह पे किताब का माना कुरान नहीं होगा, यहाँ पे अल किताब है ना, इसलिए माना कुरान है, क्योंकि ये खास किताब की तरह आपको हर एक किताब में ला नहीं, और ला लाई नफी जिन्स है, यानी किसी किस्म का नहीं, रईब शक, किसी भी किस्म का जो हो सकता है नहीं है शक, ठीक है। शक क्या चीज होती है, रईब जिसको कहते हैं, क्या चीज होती है, ये पता नहीं ऐसे है या पता नहीं नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं मानता, वो तो फिर इनकार हो गया ना। शक क्या होता है, पता नहीं, दिल कुछ मानता भी है कुछ नहीं भी मानता। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो इस रीडर से की गई, जो भी कुरान करीम को खोलता है, वो अगर वाकई इस कुरान से हिदायत पाना चाहता है तो अपने दिल से शक निकाल दे, शक की गुंजाइश नहीं। सबसे पहली बात, शक किस चीज का, कि वो हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से है कि नहीं, हो सकता है कि ये पता नहीं ठीक भी है कि नहीं, हो सकता है पता नहीं ठीक पहुंची थी कि भी नहीं, हो सकता है मेरे तक ठीक पहुंची हो कि नहीं, मतलब हो सकता है पता नहीं इसमें सारी बातें अल्लाह ताला की तरफ से हैं कि नहीं, हो सकता है इसमें कोई गलती तो नहीं होगी, मतलब बहुत सारे शक हो सकते हैं। तो उससे वो शुरू में ही कह दिया गया, इसको तो क्लीन करके आओ ना, इसके साथ नहीं आप आ सकते, या आप कुरान के आगे बैठ गए और दिल में आपके शक है, ये यकीन होना चाहिए कि ये हक किताब है, सही तरीन किताब है, सच्ची किताब है, और एज इज अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची और उनसे हमारे तक पहुंची। अगर 1% भी शक हुआ कि शायद ऐसा हो सकता है ऐसे, तो फिर हिदायत नहीं पा सकेंगे। तो ये मान के आना कि इसमें हर बात अल्लाह ताला की तरफ से, और कोई भी इसमें चेंज नहीं आई, इतने साल गुजरने के बावजूद इसमें कोई चेंज नहीं आई, और ये हक का रास्ता है। अब देख लें कि बड़े बड़े जो लोग किताबें लिखते हैं, कोई ये नहीं दावा कर सकता कि मेरी तो जो लिखाई है, तो जिंदगी भर के लिए आप चाहे 100 साल बाद उठा के देख ले, 200 साल बाद भी कभी इसमें कोई गलती निकलेगी नहीं, बल्कि लिखा होता है कि ये अब इसका लेटेस्ट एडिशन ये आया है, क्योंकि पिछले एडिशन में कुछ गलतियां होती हैं, फिर उसके बाद उनको ठीक करते हैं, फिर कोई निशानदेही करता है, बल्कि बाज दफा लिखा भी होता है कि कुछ इसमें गलती निकले तो हमें बताइएगा, लेकिन कुरान करीम का दावा है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं जो कोई निकाल सके कि ये देखो इसके अंदर ये बात गलत है, 100% सही है, और इसी के साथ ही इंसान को इसकी तरफ आना और कुछ भी रईब है ना, जिसमें जो तबीयत के ऊपर असर करे, ऐसा शक इसमें, ऐसा कोई शक नहीं जो इंसान को परेशान कर दे, फिक्रों में डाल दे, एक परफेक्ट किताब है, ला रईबा फी ही, इसमें। अच्छा, अब अगर इसको आगे मिलाएं, फी ही हुदा,
यहाँ पे आप फी ही पे वक्फ करते हैं तो फिर तो हुदन अलग है, लेकिन अगर आप फी ही को रई पे आपने वक्फ किया और फी ही को आगे मिलाया तो फी इसमें हुदन हिदायत है, रहनुमाई है। क्या आपको रहनुमाई चाहिए? हमने मांगा ही था ना, एदिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, तो हमने रहनुमाई मांगी है। तो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये है हिदायत, ये किताब है हिदायत, हुदन है ये। यानी ऐसा नहीं है कि यहदी यहां पे कहा गया ये हिदायत देती है, हुदन है ही सरापा हिदायत, नहीं हिदायत ही हिदायत है इसके अंदर, ये किसी एक टाइम के लिए नहीं है, हमेशा के लिए हिदायत है। जब भी कोई इसकी तरफ हिदायत लेने के लिए आएगा ये उसको हिदायत देगी। जैसे आप कहें ना किसी बंदे को ये सच्चा है, सच्चा है, लेकिन हो सकता है कि कभी जाके उससे झूठ निकल जाए, लेकिन एक है कि वो इतना सच्चा है कि आप उसको कहें कि ये सच है या सच्चाई है, मैंने आप या ये सखावत है, क्योंकि वो इतना सखी है कि उसका नाम ही सखावत है। आप ये देखें ये किताब हिदायत देती है, नहीं कहा कि ये तो है ही हुदन, हिदायत ही है ये, इसकी हर बात में रहनुमाई मिलेगी आपको, और रहनुमाई सिर्फ ये नहीं कि हमको बड़े बड़े काम होंगे तो उसमें रहनुमाई चाहिए, जिंदगी के हर कदम पे। सिर्फ ये नहीं कि आपने नमाज कैसे पढ़नी, एक तो हमारा ये मसला है ना, हम सोचते हैं भाई हमें क्या हिदायत देगी ये किताब, नमाज रोजा तो हमें पहले ही करना आता है, क्या सिखाएंगे हमें, हम क्यों आए कुरान की तरफ। हमें सिर्फ नमाज रोजा नहीं ये सिखाती है, ये सारी जिंदगी के अमूर में हमारी रहनुमाई करती है, हमें गाइड करती है, कदम कदम पे गाइड करती है। आप देखिए जिंदगी में कितने काम होते हैं, दिल में तरद्दुद होते हैं ना, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, इधर इससे दोस्ती करूं ना करूं, यहाँ रिश्तेदारी करूं कि नहीं करूं, ये जॉब लूं कि नहीं लूं। अब जो इस किताब की तरफ आता है ये उसको राह दिखाती है, सच्चे दिल से जिसने मांगा होगा ना ए दिन सिरात मुस्तकीम, ये उसको हिदायत देगी, रास्ता दिखाएगी। और मैंने आपको बताया था हिदायत सिर्फ ये नहीं होती रास्ता दिखाना, हिदायत है रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना, ये हमने ईदी नाम में मांगा था। तो ये राह दिखाती भी है, उस पे चलना आसान भी करती है, मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी इसमें इंतजाम है, छोड़ नहीं देती कि एक दफा राह दिखा दिया उसके बाद खुद ही जाओ, आप मंजिल तक पहुंचाती है, बशर्ते कि इंसान चलना चाहे इस पे। इसीलिए कहा गया हुदन लिल मुत्तकीन, एक जगह आता है हुदन लिल नास, यहां पे हुदन लिल मुत्तकीन, तो फिर क्या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, इसलिए कि यहां पे हुदन लिए मुत्तकीन के, वहां पे लिए अन्नास के, तो यानी जो पहला मरहला है ना वो तो सबके लिए है, जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि रास्ता दिखाती है वो सबको रास्ता दिखाएगी, जो भी इसको पढ़ने के लिए बैठेगा सीखने के लिए बैठेगा उसको ये राह दिखाएगी। लेकिन सेकंड मैंने क्या बताया, रास्ते पे चलाना मंजिल तक पहुंचाना, वो सिर्फ मुत्तकी करेंगे। वाकई इस हिदायत से फायदा, ये जो रास्ता दिखाएगी इससे फायदा वही उठाएगा ना। अब देखिए आपको जीपीएस कई दफा हमें रास्ता बताता रहता है, आप कह देते हैं ये मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन वो आपको कह रहा राइट मुड़ो आप लेफ्ट मुड़ो, वो मुड़ते जा रहे आप को वो बोलता जा रहा है आपने राइट जाना है, आप फिर भी दूसरी तरफ चलते चले जा रहे। वो तो सही रास्ता दिखा रहा है, चलेगा कौन, जो उसको फॉलो करेगा तो चलेगा ना। अब ये नहीं कि उसमें कोई गलती है, फॉलो करने वाले में खराबी है। तो ये तो दिखाएगी भी रास्ता, चलाएगी भी और पहुंचा के आएगी आपको जन्नत तक। ये वो किताब है, बशर्ते कि आप वाकई चलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया सारे नहीं चलेंगे, जितने बैठे होंगे ना सुनने के लिए, 100 दफा भी सुन लेंगे, सब नहीं होंगे जो मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए कि सबने चलना ही नहीं है। दिखाएगी ये, डायरेक्शन देगी, जैसे आपको जीपीएस बता रहा है बता रहा है बता रहा है, और वो बार बार बोलता ही जाता है। अब आपका काम है कि उसको फॉलो करें, तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। अब आप मुसलसल उससे उलट जा रहे हैं, तो अब उसमें कसूर नहीं। इसी तरह ये किताब आपको मुसलसल रास्ता बताती जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं चलते तो कसूर आपका है, इस किताब का नहीं। चलने वाले कौन होंगे उनका भी बता दिया। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम उनमें से बन जाओ जो इस पे चलने वाले हों, तो चलने वाले तो सिर्फ मुत्तकी ही होंगे। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं मुत्तकी? वो कोई खलाई मखलूक है, कोई एलियन है? कौन है मुत्तकी? कुरान करीम में आप बहुत दफा ये तकवा का लफ्ज़ पढ़ेंगे, और मुत्तकी वो है जो तकवा वाला है। अब फिर तकवा क्या चीज होती है भाई? अब आपको अगर ये कोई कहे कि तकवा को इंग्लिश में या उर्दू में किसी एक वर्ड में तकवा डिस्क्राइब हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तकवा अरबी का ऐसा वर्ड है जो हमारी जुबानों के अंदर बहुत सारे अल्फाज शायद हम यूज करें तो माना हमें समझ आ जाए। कहीं बचने का माना करते हैं, कहीं डरने का माना करते हैं, खौफ खाने का माना करते हैं, बहुत सारी चीजें इसके माने में लिखी होती हैं। तो आप कहते हैं मुत्तकी, वो जो मुत्तकी हैं, इस तरह लिख दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ड कोई किस तरह डिस्क्राइब करे इसको। तो समझते हैं पहले तकवा को, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो क्या मतलब अल्लाह से डरो? तो अल्लाह ताला तो डरने वाली जात तो नहीं है कि हम उसे खौफ खा के भाग जाएं। फिर क्या है, अल्लाह ताला से बचो? नहीं, अल्लाह ताला से बचना तो नहीं है, हमने तो उसे करीब होना है। तो फिर क्या मतलब है? यानी अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना, अल्लाह ताला की रजा को पाना, ये है तकवा। तो ये कैफियत होना, ये दिल में होना कि मैं कोई ऐसा काम ना कर दूं जिसमें अल्लाह ताला की नाराजगी हो, या मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला से मैं दूर हो जाऊं, जिससे अल्लाह ताला की नजरों से गिर जाऊं, इसका डर। और ये कि मैं हर वो नेकी का काम कर लूं जिससे उसकी रजामंदी हासिल होती, जिसको कहेंगे अब इसीलिए लिखा होता है गॉड कॉन्शियसनेस लिख दिया गया होता है, जिसको हम कहेंगे अल्लाह कॉन्शियसनेस या माइंडफुलनेस ऑफ अल्लाह सुभान ताला। तो यानी हर वक्त आप माइंडफुल रहें, कभी ये चीज आपके जहन से महव ना हो कि हाय कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से कोई काम हो रहा जिसमें अल्लाह ताला मेरे से नाराज हो जाएगा। वो भी एक डर होता है ना, किसी की नाराज, जो जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, वो क्या डर रहता है हाय मुझसे नाराज ना हो जाए। तो आपको मैंने पहले बताया था ईमान वाले तो अल्लाह ताला से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं, तो अब उनको क्या होता है, मुत्तकी तकवा के अंदर है क्या कि हर वक्त अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की फिक्र रखना, हर वक्त इस चीज की कोशिश करते रहना कि अल्लाह ताला को मैं किसी तरह खुश कर दूं। छोटा छोटा बड़े से बड़ा काम, चाहे वो आम जिंदगी का काम है, आप जॉब करने जा रहे हैं, मैं यहां जॉब करूं कि नहीं करूं, कहीं यहां जॉब करने से मेरा अल्लाह नाराज तो नहीं हो जाएगा, समझाई बात? ये आपके अंदर इसका मतलब तकवा है। कहीं ये खाने से, ये खाने की चीज जो है, कहीं इसको खाने से मेरे अल्लाह ताला की नाराजगी ना हो जाए, क्योंकि तो उसने इसे मना किया हुआ, जिस चीज से जाहिर है उसने मना किया है, वही आप करना शुरू कर दें तो नाराज ही होगा ना। इसी तरह आम जिंदगी आपकी, आप इसमें यहां पे शादी करें कि नहीं करें, ये गैर मुस्लिम है, इसके साथ अल्लाह ताला ने शादी करने से मना किया, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं करनी। तो यानी दिल में आपके हर वक्त ये एहसास रहना कि कोई ऐसी सूरत ना हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराजगी की हो, और उसको राजी करने की हर सूरत हो, यानी नेकी की शदीद तड़प और बुराई से शदीद बचना, ये है प्री रेक्विजिट। अगर आप हिदायत वाकई नरते के रास्ता तो दिखा देगी ये किताब आपको, उसमें कोई मसला नहीं है, समझ भी आ जाएगी आपको, लेकिन अगर आप वाकई चल के जन्नत तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके अंदर तकवा जरूरी है। अब हमने देखे आपको, जब आप एडमिशन लेने आए, हमने ना आपका कोई इंटरव्यू किया, ना हमने आपसे पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ना हमने आपसे पूछा आपके पास पैसे कितने हैं, आप कोई फीस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ना हमने आपसे पूछा आप कितने बड़े घर में रहते हैं, कोई भी आपसे बात नहीं पूछी, क्योंकि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हिदायत पाने के लिए। मगर हाँ, एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप हिदायत पाना चाहते हैं इस कुरान से, और वो है मुत्तकी होना, तकवा होना। अगर ये तकवा नहीं है आपके अंदर, यानी तड़प नहीं है ना कि हाय बस मैंने बचना है, हाय बस मैंने बचना है, हाय मैंने गुनाहों से बचना है, मैंने नेकियों पे चलना है, बस बस मैं किसी तरह वो मुझे रास्ता मिल जाए कि मैं नेकी में आगे बढ़ जाऊं, तो और ये नहीं कि ये सिर्फ नमाज रोजे की बात है। मैंने आपको जैसे बताया, जिंदगी के हर फेज में आप मसलन है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, या आप कोई कंप्यूटर के माहिर हैं, या आप गाड़ी के मैकेनिक हैं, या आप बिजली का काम करते हैं, या आप प्लम्बिंग जानते हैं, या आप कुकिंग करती हैं, या कोई भी ऐसा हुनर है कि दूसरे को नहीं पता, आपके पास वो इल्म है, वो आपके पास आता है चीज ठीक कराने, वो $5 की ठीक होनी थी चीज, इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन उस चूंकि उसको तो पता ही नहीं, आपने कहा ये तो 50 की है, तो 50 में ठीक होगी, इसमें तो बहुत खराबी है, ये क्या बताता है? आपके अंदर तकवा नहीं है। मेरा तकवा होता तो आप ये हेरा फेरी ना करते, आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इस बात कहने से मेरा रब नाराज हो जाएगा। ये मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आप अकेले ही हैं, किसी को नहीं पता कि आप जो केटरिंग कर रहे हैं, या आपने जो लोगों को दावत पे बुलाया हुआ उनको खाना खिलाना, ना चीज सही तरह धोई, नीचे गिर रही है चीजें उठा उठा के, फिर भी वो अंदर डाले जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, लोगों ने ही खाना है ना, गंदा ऑयल यूज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कोई देख नहीं रहा ना, आपको अल्लाह ताला की नजरों का एहसास नहीं है कि ये मेरा रब देख रहा है, वो नाराज हो रहा होगा, मतलब तकवा नहीं है। आपके घर में किसी का बच्चा आया हुआ है, उसके माँ बाप यहाँ पे नहीं, वो बच्चा इतना छोटा है कि उसको भी कुछ पता नहीं, ना वो घर जाके कुछ बता सकते हैं, अब आप उसके साथ क्या सलूक करते, या उसे क्या सवालात करके उसके घर के राज उगलवा रहे हैं, उससे उस मासूम को नहीं पता, ना उसके वालदेन को खबर है, मगर अगर तकवा है ना तो फिर आप कभी वो काम नहीं करेंगे, मेरा रब नाराज हो जाएगा ना इससे, यानी तकवा जिंदगी के हर फेज में है, ये सिर्फ मुसल्ले पे खड़ा होना तकवा नहीं होता, वो तकवा को इतना इस कुरान में तकवा को इतनी दफा एम्फोसाइज किया, 500 टाइम्स कुरान पाक में तकवा का जिक्र आया, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी कबूल ही करता है मुत्तकी से। इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों से नेकियां कबूल करता है। अगर नेकी कर भी लोगे तकवा नहीं है तो नेकी भी कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने कुर्बानियां करते हो ना, इसका खून और गोश्त मुझे नहीं पहुंचता, मुझे तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तुमने किस जज्बे से किया? क्या तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि अल्लाह मेरा रब राजी हो जाए मुझसे? क्या ये जज्बा है? बस लोग होते हैं ना, उनको ये परवाह ही नहीं है, हलाल क्या हराम क्या है, नेकी क्या बदी क्या है, इससे अल्लाह ताला खुश होता है नहीं कुछ। आई डोंट केयर, इसमें अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें अल्लाह ताला की नजरों से मैं गिर जाऊंगा, उनको ये कोई परवाह नहीं। तो ये इसका मतलब तकवा नहीं है उनके अंदर। ऐसे लोगों को फिर कुरान भी कुछ नहीं देता, कुरान तो उनको देगा, उनको राह दिखाएगा जिनके अंदर ये तड़प रहती है, जिनके लिए अल्लाह ताला जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, जो रहनुमाई चाहते हैं उससे, जो गाइडेंस चाहते हैं उससे कि अल्लाह मैंने तुझे खुश करना, तू ही मुझे बताना मैं कैसे तुझे खुश कर लूं, तू ही मुझे बचा ले ना, तो मुझे रास्ता दिखाएगा तो मैं चलूंगा ना अल्लाह। उन लोगों को तो फिर भी कोई रास्ता मिल सकता है, जिनको परवाह ना हो, बस चलो जी हम किस लिए आए हैं ये कुरान पढ़ने के लिए। असल में बच्चे इतना सवाल आत करते हैं, तो बच्चों को सवालों के फिर जवाब हम कैसे दें? उनके सामने फिर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि अम्मी को इतना भी नहीं पता या अब्बा को इतनी भी नहीं बात आती, इसलिए चलो आप कुरान ही पढ़ लेते हैं, अरे कल को कोई सवाल पूछेंगे तो हमें आ जाएगा। यही बस कुरान करीम को सीखने की नीयत है। आज जानने तो सही मैं क्यों पढ़ने के लिए आई हूं, मेरी क्या वजह है, मैंने क्यों ये कोर्स लिया, मैं क्यों आज बैठी हुई हूं, क्या वाकई मैं अल्लाह ताला को खुश करना चाहती हूँ, उसकी नाराजगी से बचना चाहती हूँ, क्या मेरे दिल के अंदर ये तलब है या नहीं है, क्या मैं ऐसा चाहती हूं, क्या मेरे दिल में कोई डर है कि मेरा खालिक मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मेरी जिंदगी में ऐसे कोई काम ना कर जाऊं। तो अगर आपको वाकई ये परेशानी है ना लगी हुई, तो फिर आपको इंशाल्लाह रास्ता जरूर मिलेगा, आपको जरूर हिदायत मिलेगी, और ये ओवरनाइट नहीं मिल जाती कि इंसान कहे कि आज बस मैं बस हिदायत का मैंने सवाल किया है, कल को बस मुझे हिदायत मिली पड़ी हो, मैं सुबह उठूं हिदायत मिल जाए, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करेंगे, यानी समझ लें कि आप कहीं नौकरी भी लेने जाते हैं तो आपका कोई इंटरव्यू करते हैं, आपके कोई क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं, अगर हिदायत पानी है ना तो आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए, इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए तकवा का सामान होना चाहिए, वरना आप हिदायत के लिए जितनी मर्जी टकरे मार लें आपको हिदायत मिलनी नहीं है, अगर आप बच बच के चलना ही नहीं चाहते, अगर आपको अल्लाह ताला की नाराजगी कोई परवाह ही नहीं है, अगर आप ये समझते हैं कि मैं जैसे मर्जी जिंदगी गुजारूं, जिंदगी किस लिए मिली है, खाओ पियो ऐश करो, बस ये जिंदगी है, मैं पैसा बनाऊं, मैं जिधर मर्जी खर्च करूं, मैं जो मर्जी करूं, मुझसे तो कोई नहीं कह सकता कि भाई ऐसे करो तो ऐसे ना करो, ये क्या बात हुई, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, इस तरह के ख्याल आते हैं तो फिर क्या हिदायत मिली। फिर तो वही बात है कि आपको GPS जिधर की भी कह रहा है कि इधर चलो, तो आप कहें नहीं तुम कौन होते मुझे बताने वाले, मैं तो अपनी मर्जी से ही चलूंगी, फिर आपने उसकी सुननी ही नहीं है, तो वो तो बताता जाएगा, आप मंजिल तक तो नहीं पहुंच सकते। ये कुरान आपको समझाता जाए बताता जाए, आपने यही कहते रहना मेरी मर्जी, मैंने तो पहले दिन से सोचा था मैं तो अपनी मर्जी करनी है, फिर कैसे होगा? ये तो आपको रीशेप करने के लिए आया, ये हिदायत आपको रीशेप कर देगी, आपका अंदर बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी। आपकी फिक्रें बदल देगी, आपकी प्रायोरिटीज बदल देगी, आपको पता होगा किस चीज को किधर किस मकाम पे रखना है, आप उसको एट इट्स प्लेस रखेंगे, जॉब को उसकी जगह पे, बच्चों को उसकी जगह पे, घर को उसकी जगह पे, अपनी इबादत को उनकी जगह पे, ये इस तरह आपको रीशेप कर देता है। लेकिन जिसको तड़प लग जाए कि मैंने बस अपने रब को राजी करना है, वो ही ये गाइडेंस जैसी, हिदायत जैसी कीमती तरीन चीज को पा सकता है। हिदायत मामूली बात नहीं है, याद रखिएगा, हिदायत बड़ी कीमती चीज है। इसको पाना खुशकिस्मती है इंसान की कि उसको हिदायत मिल जाए। और मैंने आपको बताया था कि हिदायत से ही आपके लिए जो भी नेमत आपको मिली है वो रहमत बनती है, वरना वो भी जहमत बन जाती। इतनी बड़ी कीमती नेमत है। दुनिया की चीजें तो किस्मत से मिल जाती हैं, जितना रिस्क, जितना पैसा आपकी किस्मत में लिखा, जितनी औलाद आपकी किस्मत में लिखी है, वो आपकी किस्मत से मिल जानी है आप। लेकिन हिदायत ऐसे नहीं मिलती जब तक आपके अंदर तड़प ना। आप तो सोचते हैं यहाँ पे नौकरी लेने के लिए जाएं तो कितने उसके लिए आप जतन करते हैं, कई बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो कितनी उसके लिए पापड़ बेलते। हिदायत को सोचते हैं इतनी सस्ती है, मैं बस आराम करती रहूंगी, और हिदायत को खुद ही आके नॉक करना चाहिए और मेरे पास आके बैठ जाए और मेरी खिदमत करे। ये नहीं होता। तो पहले अपने अंदर तड़प पैदा करने, पहले अपने अंदर ये तलब पैदा करें, मेरी जिंदगी का बस ये है। ठीक है, अभी नहीं भी वो चल रहे, लेकिन कम से कम ये एक रिक्वायरमेंट है कि पहले अपने अंदर कुछ मैं झांक के तो देखूं, मैं क्यों ये कुरान की हिदायत पाना चाहती हूँ, इसलिए ताकि अल्लाह ताला को खुश कर लूं और उसके वो वाले काम सारे करूं जिससे मेरा रब खुश होता। वो खुश कैसे होगा? वो वाले काम आप करेंगे जो उसको खुश करते होंगे, और उन कामों से मैं बच जाऊं जो उसको नाराज करने वाले होंगे। फिर आपको कुरान बताएगा ना, ये है जो अल्लाह ताला की नाराजगी का काम, इनसे वो मोहब्बत करता है, इनके जैसे ना होना, ये काम ना करना, फिर ही आपको बताएगा। तो फिर आप फौरन लेते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, जब आपने पहले ही दिल बनाया हुआ है और दिल में पहले ही है मैं ना मानू मैं ना मानू, तो फिर कुरान बताता रहे ये अल्लाह ताला को नाराज करता है काम, ये राजी करता है, मैंने मानना ही नहीं, मैं तो पहले ही से सोचा हूँ। वो मुत्तकी दिल तो नहीं है फिर, तकवा दिल में होता है, ये बाहर नहीं होता कि मैं बाहर अपना खौफ दिखाती जाऊँ, मैं बहुत अल्लाह ताला से डरती, ये दिल में होता है। तो उस दिल के अंदर झांक के जरा देखिए क्या करने आए हैं हम इस कोर्स से, ग्रेजुएशंस, सर्टिफिकेट्स, लोगों को दिखाना कि हम भी कुरान पढ़े हुए हैं, या लोगों में फख्र करना, या अपनी इल्मी धाक बिठाना, या वाकई ये दिल के अंदर तमन्ना और ये दिल के अंदर शौक है कि अल्लाह की खुशनुदी पालू और उसकी नाराजगी से बच जाऊं, मैं जानू कि वो उसके लिए मैं आई हूं कि मैं जानू कि कौन से काम मेरे रब को नाराज करते हैं क्योंकि मैंने उनको छोड़ना है ना, और कौन से काम है जो उसको खुश करते हैं क्योंकि मैंने उनको अपनाना है ना। ये कैफियत दिल की लेकर आइए, फिर देखिए कुरान अपनी बरकतें निछावर कर देता है। और शेख अब्दुल कादिर जीलानी लिखते हैं कि तकवा को अगर जानना है कि तुम्हारे दिल में तकवा है या नहीं, तो उसका भी उन्होंने एक टेस्ट बता दिया, वो टेस्ट करके देख लें हम सारे। अब वो ठीक है, अगर नहीं टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं जरा ठीक ठाक अपने आप को करके। कैसे कि आप टेस्ट ये करेंगे, जो कुछ भी हमारे दिल में है ना, क्या क्या है पहले तो देखें, जरा देखें दिल में झांक के देखें, ख्वाहिशात हैं, इरादे हैं, मंसूबे हैं, डिफरेंट प्लानिंग्स हैं, या और भी चीजें हैं, लालच है, कीने हैं, बदगुमानियां हैं, बुग्ज हैं, हसद है, नफरतें हैं, इसी तरह मोहब्बतें भी हैं, शौक भी हैं, अकीदा भी अंदर ही है दिल में, खौफ भी है, सोचे हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं ना दिल में, सारी की सारी निकालें और एक प्लेट में रख दें, ठीक है? निकालें उनको, उसको बाहर और एक प्लेट में रख लें। अब ऐसे समझें कि जैसे लोग हमारे जाहिर को देख सकते हैं ना, वैसे ही इस वक्त वो इस प्लेट में पड़ी हुई सारी चीजों को देख सकते हैं। वैसे ही समझ लें मेरे दिल को पूरा देख सकते हैं, समझ लें कि मेरा दिल वैसे ही एक्सपोज हो गया जैसे मेरा चेहरा। चेहरे पे तो हम मेकअप कर लेते हैं ना ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत लगे। अब कोई दिल पे मेकअप नहीं है, बिल्कुल दिल शीशे की तरह हो गया, अंदर सारा कुछ नजर आ रहा है। यानी जो आके देखेगा कहेगा हाय कितना गंदा काला दिल, अरे हाय इसके अंदर तो ये भी है। अब इस वक्त तुम्हारे दिल को कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ अल्लाह ताला की नजर में है वो देख सकता है, बाकी कोई भी किसी को भी नहीं पता कौन कैसा दिल लेके बैठा। लेकिन अब आपने प्लेट में रख दिया, और अब टेस्ट ये है कि इस प्लेट को उठा के आप लोगों के दरमियान चल के दिखाएं, आपको ये गवारा होगा? अगर नहीं तो समझने के दिल में तकवा नहीं है, क्योंकि आपको ये डर है कि लोगों को पता चल जाएगा हाय मेरे लोग क्या कहेंगे मेरा दिल ऐसा है। आपको अगर डर नहीं लगता, आपको कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि अच्छी बात है, लोगों को सबको पता चल रहा है देखो मेरा दिल है कितना खूबसूरत, तो समझ लें आपके दिल में तकवा। तो आप कैसे लाएं तकवा? अब ऐसा करें कि इस दिल को फिर साफ करें, फिर उसके बाद जब ये इस काबिल हो जाए कि अब आप इसको लेके सब में जा सकते हैं, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तैयार हो गया। और भी आसान सा एक नुस्खा है कि आप किसी हालत में भी हो ना, अकेली हैं, किसी मजलिस में हैं, खुशी में हैं, गमी में हैं, अपनों में हैं, गैरों में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, दिन में हैं या रात में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ जरा नजरें कर लिया करें। मैं इस वक्त जिस हालत में हूं, जैसे जो बैठी हुई हूं, जो भी कर रही हूं, दरसे कुरान की मजलिस है, या मैं किसी शादी पे हूं, या कोई गमी का मौका है, कामयाबी का मौका है या नाकामियों का मौका है, तो अल्लाह ताला से बात किया करें। अल्लाह ताला मुझसे कोई नाराजगी का काम ना हो जाए कहीं, मैं नहीं तेरी नाराजगी मोल नहीं दे सकती है अल्लाह, मैं तो बस इरादा कर लिया, मैंने तुझे खुश ही करना है, अल्लाह तू मुझे गाइड कर देना। फिर देखिए जो कर रहे हैं कहीं इसमें कुछ ऐसी खराबी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो नाराज हो जाए, बस ये काम करें। कोई ऐसा मौका है यहाँ पे जिसमें मैं अल्लाह ताला को खुश कर लूँ? बस फौरन वो कर लूँ। तो ये नहीं कि सिर्फ क्लास में बैठे हैं तो बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और वो और उसके बाद कुछ याद ही नहीं कि अल्लाह ताला को खुश करना है या उसके नाराजगी से बचना है या कुछ नहीं, भूल ही गए। अकेले में अल्लाह याद आ गया, मगर दोस्तों में है तो फिर या रिश्तेदारों में भूल ही गए, या अगर मुसल्ले पे बैठे हैं तो अल्लाह याद है, और मुसल्ले से उठे हैं तो अल्लाह ताला भूल गया, उसी मुश्किल के अंदर है तो अल्लाह ताला याद आ गया, और शादी का मौका तो अल्लाह भूल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा जाहिर बातें नेक हो जाए तो हम अपने दिल को वैसे साफ और शफाफ और खूबसूरत बनाएं जैसे हमारा जाहिर हम खूबसूरत बनाने पे बहुत तवज्जो करते हैं और बहुत उसको डेकोरेट करते हैं। उससे ज्यादा डेकोरेट अपने दिल को कर लें, निकाल दें गंदगियां। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि दिल साफ लेकर आइएगा या कुरान पढ़ने के लिए आए, तो गंदगियां निकाल दें, तब किसी काबिल होंगे इससे कुछ सीखने के।